हरे कृष्णा, भगवान को अर्पण किए हुए प्रसाद की महिमा। नारद मुनि जो अपने नाम जप के प्रभाव से हर जगह हर समय कहीं भी आ जा सकते हैं, एक बार वो वैकुंठ में पधारे जहाँ पर लक्ष्मी महारानी भगवान विष्णु को प्रसाद खिला रही थी। जब भगवान विष्णु ने पर्याप्त प्रसाद ग्रहण कर लिया तो उसके बाद लक्ष्मी महारानी वही उच्चिष्ट ग्रहण करने लगी। नारद मुनि ने जब ये देखा तो उनकी बहुत इच्छा हुई कि ये कितना सुंदर प्रसाद है जो भगवान ने अभी खाया है, मैं उसे ग्रहण करना चाहता हूँ। तो नारद मुनि ने विष्णु और लक्ष्मी महारानी की बहुत स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर लक्ष्मी महारानी ने कहा, नारद तुम्हारी स्तुति से मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ, आज मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए? नारद ने कहा, माता जो मैं मांगूंगा वो आप दोगी मुझे? लक्ष्मी महारानी ने कहा, यदि देना ना होता तो मैं बोलती ही क्यों? नारद मुनि ने कहा, हे माता, मुझे धन दौलत यश मान इत्यादि कुछ नहीं चाहिए। लक्ष्मी महारानी ने कहा, मैं जानती हूँ नारद तुम्हें ये सब नहीं चाहिए, पर ये तो बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए? नारद जी ने कहा, हे माता, मैं उस उच्चिष्ट प्रसाद का आस्वादन करना चाहता हूँ जो कि अभी विष्णु भगवान ने ग्रहण किया है। लक्ष्मी महारानी ने कहा, ये प्रसाद? इस पे तो किसी और का अधिकार है ही नहीं, विष्णु मेरे पति हैं, मैं ही आज तक केवल मैं ही उनका उचित प्रसाद खाती हूँ और इसके अतिरिक्त किसी भी और को ये अधिकार नहीं है कि वो मेरे पति का उचित प्रसाद ग्रहण करे। नारद जी ने कहा, माता अभी तो आपने मुझे वचन दिया था कि जो मैं मांगूंगा वो आप मुझे दोगे, तो क्या आप मुझे ये मेरी ये बात नहीं मानोगे, वचन तोड़ दोगे अपना? लक्ष्मी महारानी ने कहा, नहीं बेटा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है, आज मैं आपको यह उच्चिष्ट प्रसाद ग्रहण करने के लिए देती हूँ। इतना कहने पर लक्ष्मी महारानी ने उस प्रसाद का कुछ भाग नारद मुनि को दे दिया। जब नारद मुनि ने भगवान का उच्चिष्ट प्रसाद खाया तो उनके अंदर विकार उत्पन्न होने लगे, प्रेम भाव से उनकी आंखों से अश्रु धाराएं बहने लगी, गला रुद्ध हो गया और वो समस्त प्रेम विकार उनके अंदर आने लगे। नारद मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए, झूमने लगे, नाचने लगे, इतना खुश हो गए, ऐसा लगा दुनिया की सबसे कीमती चीज उनको मिल गई है। वो बहुत ही सुंदर नृत्य कर रहे थे, गान कर रहे थे और झूम रहे थे। झूमते झूमते वो कैलाश तक पहुंचे और कैलाश में जब शिव जी ने नारद जी को देखा तो शिव जी ने कहा, नारद मुनि क्या बात है, आज आप बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। तो नारद मुनि ने कहा, हाँ हाँ महादेव, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आज तो प्रसन्नता की सीमा लांग चुका हूँ, इतना प्रसन्न हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता। शिव जी ने कहा, अच्छा ऐसी क्या प्रसन्नता हुई है देवर्षि, मुझे भी तो बताइए। तब नारद मुनि ने कहा, आज मैंने भगवान का उच्चिष्ट प्रसाद खाया है और मुझे इतना आनंद महसूस हो रहा है, इतना आनंद विभोर हो रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है झूमू नाचू गाऊ, बहुत उत्साह हो रहा है मुझे। शिव जी ने कहा, अच्छा आप भगवान का प्रसाद खाए, आपको लक्ष्मी महारानी ने भगवान का उच्चिष्ट प्रसाद दिया, क्योंकि उनके प्रसाद पर तो केवल लक्ष्मी महारानी का ही अधिकार है, आपने कैसे किया ये? तो नारद मुनि ने पूरी वार्ता बताई कि मैंने इस तरह से मुझे लक्ष्मी महारानी ने प्रसाद खिलाया। ये सुनकर शिव जी की भी आंखों से आंसू बहने लगे और नारद मुनि से कहा, देवर्षि इतनी सारी कृपा अकेली ही खा ली, हमारे लिए कुछ भी नहीं बचाया, आपको ये जो उत्साह है वो तो मेरे साथ बांटने के लिए आ गए, पर वो कृपा मेरे साथ नहीं बांटी आपने, प्रसाद तो सबके साथ बांट कर खाने के लिए होता है, आप अकेले ही वो सारी कृपा कैसे ले सकते थे? इतना सुनने के बाद देवर्षि को लगा कि वाकई में मुझे शिव जी को भी प्रसाद खिलाना चाहिए था, लेकिन अब क्या करते, प्रसाद तो था ही नहीं। तो शिव जी नारद मुनि के हाथों को पकड़ लिया और बोले, इन्हीं हाथों से आपने भगवान का प्रसाद खाया है ना, तो ऐसे उनकी फिंगर्स में देखा तो उनकी फिंगर में थोड़ा सा प्रसाद, अभी तक वो हाथ धो के नहीं आए थे क्योंकि वो इतना प्रसन्न थे कि डायरेक्ट से शिवलोक में आ गए उनको बताने के लिए। तो उनकी, जैसे हम खाते हैं तो कहते हाथ में थोड़ा सा प्रसाद लग जाता है, तो लगा हुआ, तो फिर हम लोग उसको चाट के खाते हैं। तो शिव जी नारद मुनि की उंगलियों को चाट के वो प्रसाद खाने लगे और वही प्रेम भाव और वो विकार शिव जी के अंदर भी आने लगे। शिव जी भी नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, पागलों की तरह नृत्य कर रहे हैं, आंखों से अश्रु की धाराएं निकल रही हैं, गला रुद्ध हो रहा है, प्रेम विकार उत्पन्न हो रहे हैं। इतना सब हो रहा था और इतने में पार्वती महारानी आ गई। पार्वती महारानी ने कहा, ये क्या नारद मुनि और शिव जी आज इतने उत्साह में कैसे हैं? तो पार्वती महारानी ने पूछा, हे महादेव, हे देवर्षि, क्या हम आपकी इस उत्साह और प्रसन्नता का कारण जान सकते हैं? नारद मुनि और शिव जी ने उत्साह में कहा, हाँ महादेवी, आज बहुत कृपा प्राप्त हुई है, आज हमें भगवान विष्णु का उच्चिष्ट प्रसाद मिला है, हमारे अंदर इतना उत्साह हो रहा है कि हम आपको बता नहीं सकते। इतने खुशी में जब उन्होंने ये उत्तर दिया तो पार्वती माता को बहुत क्रोध आया, बहुत बोला, इतनी सारी कृपा जो भगवान विष्णु की थी वो आप अकेले कैसे ले सकते थे? शिव जी को बोला, महादेव, आपको मेरा ख्याल नहीं आया, आप कैसे खा सकते थे वो अकेले प्रसाद? तो शिव जी ने बोला कि मेरे लिए तो खुद भी नहीं बचा था, मैं तो है ना नारद मुनि खाली खा के आ गए थे, लेकिन पार्वती माता इतना क्रोधित हो गई थी, इतना क्रोधित हो गई थी कि उन्होंने महाकाली का रूप धारण कर दिया कि इतनी बड़ी कृपा से मुझे क्यों वंचित रख दिया। जब इतना उनको इतना क्रोध आया, ब्रह्मा जी भी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी को जब ये पता चला कि भगवान के प्रसाद का उचिष्ट इनको मिला है पर हमें नहीं मिला, तो उन्हें भी बहुत सारा क्रोध आने लगा। अब वो पार्वती महारानी जो थी वो भी माता काली के रूप में गुस्सा कर रही थी, क्रोध कर रही थी, और ब्रह्मा जी को भी गुस्सा आ रहा था, क्रोध आ रहा था कि हमें क्यों वंचित रखा गया इतने ज्यादा कृपा से। तो फिर है ना नारद मुनि ने देखा, अब तो बहुत प्रलय नहीं आ जाए, ब्रह्मा जी भी क्रोध में आ गए हैं, महाकाली भी क्रोध में आ गई हैं। तो नारद मुनि विष्णु भगवान के पास गए और उन्हें सारी वार्ता कह सुनाई कि प्रभु अब क्या करें, वहां पर तो ये सब हो रहा है। तो फिर विष्णु भगवान और लक्ष्मी महारानी वैकुंठ से आए शिवलोक में, जहां पर सब जमा थे और गुस्सा कर रहे थे, क्रोध कर रहे थे, और वहां पर आके उन्होंने शिव जी की पत्नी जो महारानी उमा थी उनको और ब्रह्मा जी को ये कहकर सांत्वना दी कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आज तक तो केवल वैकुंठ में ही मेरा प्रसाद पॉसिबल होता था, सिर्फ लक्ष्मी महारानी ही वो ग्रहण करती थी, लेकिन आज के बाद हर घर में भगवान को भोग लगेगा और हर घर में ये महाप्रसाद की कृपा एक एक व्यक्ति को प्राप्त हो जाएगी। जब भी कोई चाहे, जिस जो भी खाना चाहे, वो पहले भगवान को खिलाएगा और फिर उस भगवान की जो कृपा प्रसाद के रूप में उसे प्राप्त होगी वो खुद खाएगा और इस तरह उसके समस्त अपराधों का क्षय हो जाएगा। तो इस तरह ये भगवान की असीम कृपा है हमारे ऊपर कि हमारा भगवान, और भगवान श्री कृष्ण साफ कहते हैं 9.26 में कि आप तत्तम पुष्पम फलम दोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छते तदहम भक्ति प्रहतम अश्नामि प्रयतात्मना। तो मुझे जो भी प्रेम से खिलाओ मैं उसे खाता हूँ, साफ साफ वर्ड लिखा, अश्नामि मतलब मैं खा लेता हूँ उसको, और वो तुम्हारे लिए जो बच जाता है वो तो प्रसाद होता है और वो कृपा होती है जिससे तुम्हारे संपूर्ण पाप कर्मों का क्षय हो जाता है। भगवान कहते हैं 3.13 में, यज्ञ शिष्टाश्ना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषय, जो मेरा उच्चिष्ट खाते हैं, जो यज्ञ का उच्चिष्ट यानी भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद है उसका बचा हुआ खाते हैं, मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषय, वो अपने समस्त अपराधों से मुक्त हो जाते हैं। और अगर नहीं अर्पण करते हैं, भगवान को नहीं खिलाते तो क्या, मुंजते ते त्वगम पापाम, ये पचन त्यात्म कारण, जो अपने सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए पचाते हैं, पकाते हैं प्रसाद, वो सिर्फ और सिर्फ पाप खाते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने, श्री प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए थे तो भक्त बन गए थे एक व्यक्ति, मतलब भक्त ने, मतलब अभी नया नया प्रचार स्टार्ट हुआ था, तो जब श्री प्रभुपाद ने तमोगुणी और सत्वगुणी ये सब खानों के विषय में बताया, तो फिर उसने कहा कि अभी मैं सत्वगुणी आहार करूंगा, अभी मैं ना बस सत्वगुणी आहार ही करूंगा और तमोगुणी और रजोगुणी नहीं करूंगा। ऐसा सोच के जब सुबह को श्री प्रभुपाद को अपना ये निर्णय सुनाया और श्री प्रभुपाद को कहा कि मैं आपको एक बात बताऊंगा, आपको इतनी प्रसन्नता होगी, तो श्री प्रभुपाद ने बोला बताओ क्या बात है। तो उन्होंने बताया कि श्री प्रभुपाद मैंने नॉन वेजिटेरियन खाना छोड़ दिया है, अब मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं खाऊंगा। तो इतना खुश हो कि वो बता रहा था, तो श्री प्रभुपाद ने बोला अच्छा ऐसी बात है, फिर बोला हाँ आपको प्रसन्नता नहीं हुई। तो श्री प्रभुपाद ने, सामने कबूतर था जो पिजन होता है ना, वो दाना खा रहा था, तो श्री प्रभुपाद ने उसकी तरफ इशारा करके बताया वो जो कबूतर है ना, तो उसने बोला हाँ, बोला ये भी नॉन वेजिटेरियन नहीं खाता। तो व्यक्ति हैरान हो गया, बोला ये क्या बात हुई, कबूतर नहीं खाता है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो खा ही नहीं सकता है, नहीं खाता है। तो वापस थोड़ी देर के बाद है ना, बकरी, एक बकरी नहीं होती जो गोट, वो भी सामने खड़ी थी, तो वो भी घास खा रही थी। तो श्री प्रभुपाद ने बोला ये बकरी है ना, वो भी नॉन वेजिटेरियन नहीं खाती। तो उस व्यक्ति को ऐसा लगा कि आखिर श्री प्रभुपाद जी कहना क्या चाह रहे हैं। तो बोला कि अगर ये लोग भी नहीं खा रहे हैं, ये बकरी नहीं खा रही है, ये पिजन भी नहीं खा रहे हैं और तुम भी नहीं खा रहे, तो कौन सी बड़ी बात हो गई, आप भी जो आपका दिल कर रहा है वो खा रहे हो, उनका भी जो दिल कर रहा है वो खा रहे हैं, तो फिर है ना आपने भी तो छोड़ा है, तो बस कुछ और क्या, मतलब आप खा रहे हो ना कुछ तो खा रहे हो नॉन वेज, लेकिन अपराध तो आपको फिर भी लगेगा। तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे अपराध कैसे लगेगा। तो फिर श्री प्रभुपाद ने उन्हें बताया कि चाहे आप जो भी खाते हो, चाहे वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, चाहे सात्विक हो चाहे राजसिक हो, चाहे जो भी हो, आप जो भी खा रहे हो उससे अपराध लग रहा है, चाहे वो सात्विक आहार ही क्यों ना हो। भुंजते ते त्वगम पापाम, ये पचन त्यात्म कारण, यदि आप अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए खा रहे हो तो वो अपराध है। तो बोला कैसे करना फिर, तो बोला ये सारे अपराध, फिर उन्होंने श्री प्रभुपाद ने बताया कि जब हम खाते हैं तो उससे बहुत सारे अपराध हो रहे होते हैं, कूटने में अपराध होते हैं, और जब चूल्हा जलता है तो उस कितने सारे कीटाणुओं का नाश होता है, जब फ्राई कर रहे होते हैं तो भी कितने अपराध हो रहे होते हैं। तो सारे अपराध हमें भुगतने पड़ेंगे यदि हमने उसको उस प्रसाद को अर्पण नहीं किया। तो फिर श्री प्रभुपाद ने उन्हें बताया कि सबसे पहले हमें भगवान को प्रसाद अर्पण करना चाहिए, उससे वो सारे अपराध जो है वो क्षय हो जाते हैं। और भगवान को अर्पण सिर्फ वही चीज की जा सकती है जो कि हम भगवान, हमें भगवान ने कहा, क्योंकि भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, तो जो भगवान को अच्छा लगता है वही अर्पण करना पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने साफ साफ बताया कि मुझे क्या क्या अच्छा लगता है, तो वही चीजें जो कि शुद्ध सात्विक है वो पहले भगवान को अर्पण की जाती है, फिर खाई जाती है, तो हमारे समस्त अपराधों का नाश हो जाता है। हरि बोल।